एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे फ्रांसीसी लेखक की दुनिया में, मतलब गहराई में उतर रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही जुनून, क्रांति, भव्यता, ये सब दिमाग में आता है। विक्टर ह्यूगो।
हाँ बिल्कुल,
19वीं सदी का फ्रांस कितनी उथल-पुथल थी, और उस सब के बीच ह्यूगो सिर्फ कह लीजिए कवि या उपन्यासकार नहीं थे,
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं,
वो तो अपने समय की धड़कन थे, एक नैतिक आवाज थे।
सही कहा, एक नैतिक शक्ति।
तो आज हम उन पर बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, ह्यूगो ने मानवीय गरिमा, न्याय, मुक्ति जैसे बड़े सवालों को जिस तरह उठाया, वो आज भी मतलब उतने ही जरूरी लगते हैं ना?
बिल्कुल जरूरी है, और देखिए उनका जीवन ही अपने आप में किसी कहानी से कम नहीं था।
हाँ,
सोचिए, जन्म तब हुआ जब नेपोलियन का दौर था बिल्कुल शिखर पर, और उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा। क्रांतियां देखी, साम्राज्य ढहते देखे, गणतंत्र बनते बिगड़ते देखे, और ये जो राजनैतिक खींचतान थी ना, ये तो उनके घर के अंदर तक थी। पिता थे सेनापति, पक्के नेपोलियन समर्थक,
अच्छा,
और माँ वो थी कट्टर राजभक्त। तो जैसे पूरे फ्रांस का जो द्वंद्व था वो उनके परिवार में ही मौजूद था।
बाप रे।
जाहिर है इस माहौल ने उनके सोचने के तरीके को, उनके नजरिए को जरूर गढ़ा होगा।
तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता थी उस दौर की, 1830 की क्रांति, फिर 48 वाली, लुई नेपोलियन का तख्ता पलट, क्या यही सब उनके लेखन की मुख्य प्रेरणा थी?
प्रेरणा का एक बड़ा हिस्सा तो जरूर थी, हाँ वो उनके लेखन का कह सकते हैं कैनवस था। लेकिन सिर्फ यही नहीं था,
अच्छा, और क्या था?
उसी समय फ्रांस में एक और किस्म की क्रांति चल रही थी, वो थी साहित्य की दुनिया में।
साहित्य में?
हाँ, जिसे हम स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म कहते हैं, ये असल में जो पहले से चला आ रहा था ना, नियोक्लासिसिज्म, जो बड़ा नियमों में बंधा, तर्क पर आधारित था।
हाँ, वो नियम कानून वाला।
बिल्कुल, तो रोमांटिसिज्म उसके खिलाफ एक तरह का भावनात्मक विद्रोह था। इसमें कल्पना की उड़ान, प्रकृति का विशाल रूप, इंसानी जज्बात की गहराई, इन सब पर जोर था।
और ह्यूगो इसमें कहाँ फिट होते थे?
अरे ह्यूगो तो इसके सबसे बड़े नेता मानकर उभरे, निर्विवाद नेता।
अच्छा, जैसे उनके नाटक क्रॉमवेल की भूमिका, कहते हैं वो तो रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो बन गई थी।
बिल्कुल सही, वो भूमिका एक घोषणा पत्र ही थी। और फिर 1830 में उनका नाटक आया हेरनानी।
हाँ, हेरनानी का तो बड़ा जिक्र होता है।
उसका मंचन तो कमाल था, मतलब थिएटर कम, युद्ध का मैदान ज्यादा लग रहा था।
युद्ध का मैदान क्यों?
क्योंकि एक तरफ थे नए युवा रोमांटिक लेखक और कलाकार ह्यूगो के समर्थक, दूसरी तरफ थे पुराने परंपरावादी लोग। दोनों में रीति मत भिड़ंत हो गई, नारेबाजी, शोर शराबा।
बाप रे, एक नाटक के लिए?
हाँ, पर वो सिर्फ नाटक की लड़ाई नहीं थी, वो कला की दिशा तय करने वाली लड़ाई थी। ह्यूगो ने उस दिन फ्रांसीसी थिएटर को जैसे आजाद करा दिया।
कमाल है। अच्छा, उनकी शुरुआती जीवन पर वापस आते हैं। बिसांको में जन्म हुआ, पिता की नौकरी के चक्कर में बचपन में काफी घूमना पड़ा।
हाँ, कॉर्सिका, नेपल्स, मैड्रिड, कई जगह रहे।
कहते हैं 14 साल की उम्र में ही कह दिया था, मैं या तो शैटोब्रियांड बनूंगा या कुछ नहीं। शैटोब्रियांड उस वक्त के सबसे बड़े रोमांटिक लेखक थे, इतना आत्मविश्वास।
प्रतिभा तो असाधारण थी ही, और शायद उस वक्त का जो माहौल था, जो ऊर्जा थी, उसने भी असर डाला होगा। पहचान भी जल्दी मिल गई।
हाँ, वो राजा लुई XVI से पेंशन वाली बात।
हाँ, 1822 में पहले ही कविता संग्रह पर शाही पेंशन मिल गई। उसी साल शादी भी हुई एडल फॉचर से।
बचपन की दोस्त थी शायद।
हाँ, लेकिन निजी जीवन भी सीधा साधा नहीं था। उनकी पत्नी एडल का ह्यूगो के ही करीबी दोस्त सेंट ब्यूव से रिश्ता रहा।
ओहो,
वो तो करीब 50 साल तक, मतलब जीवन भर, उनकी साथी रहीं, उनकी सचिव, उनकी प्रेरणा।
50 साल?
हाँ, ये सब रिश्ते, ये तनाव, ये भावनाएं कहीं ना कहीं उनके काम में झलकती तो हैं ही।
और इसी दौर में उनके राजनीतिक विचार भी बदल रहे थे, है ना? शुरू में राजशाही के समर्थक थे।
हाँ, शुरू में थे, लेकिन धीरे धीरे उदारवादी हुए और फिर पक्के गणराज्यवादी बन गए।
सामाजिक न्याय के लिए बोलने लगे।
हाँ
फ्रेंच एकेडमी के सदस्य भी बने, पीयर ऑफ फ्रांस भी।
हाँ सम्मान तो मिला, लेकिन असली मोड़ शायद 1851 में आया, जब लुई नेपोलियन ने तख्ता पलट किया।
उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया था।
बहुत कड़ा विरोध, और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी।
क्या कीमत?
देश छोड़ना पड़ा। निर्वासन, लगभग 19 साल फ्रांस से बाहर रहे।
19 साल
कहाँ रहे? पहले ब्रुसेल्स गए, फिर चैनल आइलैंड्स, जर्सी, फिर ग्वेंसे। वहीं ग्वेंसे में उनका मशहूर घर है, हॉटेविल हाउस।
लेकिन ये दिलचस्प है कि निर्वासन ने उन्हें तोड़ा नहीं।
बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी आवाज और बुलंद हो गई और तीखी हो गई। सोचिए, फ्रांस से दूर बैठकर ही उन्होंने नेपोलियन थर्ड पर वो तीखे लेख लिखे, नेपोलियन ले पिटिट।
अच्छा।
और सबसे बड़ी बात, अपना महान उपन्यास लेस मिजरेबल्स, उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने निर्वासन में ही लिखा। ये दिखाता है कि कैसे दबाव भी कभी कभी रचनात्मकता को और भड़का देता है।
ये निर्वासन व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बेटी लियोपोल्डीन की मौत का दुख तो पहले से ही था।
हाँ, 1843 में उनकी बेटी डूब गई थी। वो सदमा बहुत गहरा था। उसकी छाया उनके लेखन पर हमेशा रही, खासतौर पर उनका एक काव्य संग्रह है, लेस कॉन्टेम्पलेशंस।
हाँ, उसका जिक्र जरूरी है।
वो बहुत ही निजी, बहुत मार्मिक संग्रह है, 1856 में आया। वो जैसे दो हिस्सों में बटा है, बेटी की मौत से पहले और आज। निर्वासन के अकेलेपन में कहते हैं वो आत्माओं से संपर्क करने की कोशिशें भी करने लगे थे, सियांसेज में रुचि बढ़ गई थी।
अच्छा, आत्माओं से संपर्क।
हाँ, ये शायद उस गहरे दुख और अकेलेपन से उभरने का एक तरीका रहा हो उनके लिए।
लेकिन फिर 1870 में उनकी वापसी हुई, जब नेपोलियन थर्ड का साम्राज्य गिरा।
हाँ, और क्या वापसी थी, किसी हीरो की तरह उनका स्वागत हुआ पेरिस में। फ्रेंको प्रुशा युद्ध हुआ, पेरिस घिर गया, लेकिन वो शहर छोड़ के नहीं गए, नेशनल गार्ड में भी सेवा दी।
और पैलेस कम्यून पर उनका क्या रुख था? वो भी बड़ा जटिल दौर था।
हाँ, जटिल था। उन्होंने कम्यून का समर्थन तो नहीं किया, उसके तरीकों का विरोध किया, लेकिन बाद में जब कम्युनार्ट्स पर कार्रवाई हुई तो उनकी माफी के वकालत की। ये उनके विचारों की गहराई दिखाता है, मतलब वो किसी एक खांचे में फिट नहीं होते थे।
अपने आखिरी सालों में तो वो फ्रांस के राष्ट्रीय पितामह जैसे बन गए थे।
बिल्कुल, सेनेटर भी चुने गए, और जब 1885 में उनकी मृत्यु हुई।
हाँ, उनका अंतिम संस्कार तो ऐतिहासिक था।
ऐतिहासिक कहते हैं, करीब 20 लाख लोग, 20 लाख पेरिस की सड़कों पर थे उनकी अंतिम यात्रा में।
अविश्वसनीय।
और उन्हें पैंथियन में दफनाया गया, जहां फ्रांस के सबसे महान लोगों को जगह मिलती है। ऐसा सम्मान किसी लेखक को शायद ही कभी मिला हो।
चलिए अब जरा उनकी कुछ महान रचनाओं की बात करते हैं। द हंचबैक ऑफ नोट्रेडम, या नोट्रेडम का कुबड़ा, 1841 में आई थी। ये सिर्फ वो कुबड़े क्वासिमोडो और जिप्सी लड़की एस्मेराल्डा की कहानी तो नहीं है ना?
बिल्कुल नहीं, वो तो कहानी का एक हिस्सा है। ये उपन्यास तो 15वीं सदी के पेरिस का पूरा जीवन सामने रख देता है। एक जीता जागता महाकाव्य है वो। लेकिन उससे भी बढ़कर ये वास्तुकला पर, इतिहास पर और समय कैसे बदलता है, उस पर एक गहरा चिंतन है। ह्यूगो दिखाते हैं कि कैसे पहले कैथीड्रल, मतलब चर्च, ज्ञान का केंद्र हुआ करता था।
हाँ।
लेकिन फिर प्रिंटिंग प्रेस आया, किताबें छपने लगी, और अब किताबों ने वो जगह ले ली, कैथीड्रल बनाम किताब।
ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है।
और इस उपन्यास का सबसे बड़ा असर पता है क्या हुआ?
क्या?
इसने सचमुच नोट्रेडम कैथीड्रल को गिरने से बचा लिया।
क्या बात कर रही है, कैसे?
उस समय कैथीड्रल बहुत जर्जर हालत में था, उसे गिराने तक की बातें हो रही थी। लेकिन जब ये उपन्यास आया और लोकप्रिय हुआ, तो लोगों को उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत समझ आई। एक आंदोलन शुरू हुआ उसके संरक्षण के लिए।
वाह, ये होती है शब्दों की ताकत।
बिल्कुल।
और इसी उपन्यास में वो सिद्धांत भी दिखता है जिसकी बात हम कर रहे थे, उदात और विभत्स का संगम। सब्लाइम एंड ग्रोटेस्क।
हाँ, बाहरी कुरूपता के पीछे छुपी आंतरिक सुंदरता या महानता, क्वासिमोडो इसी का प्रतीक है। ह्यूगो का मानना था कि कला को जीवन की पूरी सच्चाई दिखानी चाहिए, सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि जो कुरूप है, जो विचित्र है, वो भी, क्योंकि असलियत ऐसी ही होती है, मिलीजुली।
और यही नजरिया हमें उनके सबसे बड़े उपन्यास लेस मिजरेबल्स में और भी ज्यादा गहराई से मिलता है।
हाँ, ला मिजराब 1862 में आया। इसे तो मतलब 19वीं सदी का सबसे महान सामाजिक उपन्यास माना जाता है।
जां वल्जां की कहानी, एक पूर्व कैदी जो रोटी चुराने के जुर्म में सालों जेल में रहता है और फिर बाहर आकर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है, समाज और इंस्पेक्टर जावेर से लगातार जूझते हुए।
ये सिर्फ जां वल्जां की कहानी नहीं है, ये उस समय के पूरे फ्रांसीसी समाज का आईना है, खासकर पेरिस के गरीब लोग, मजदूर वर्ग, उनकी गरीबी, उनका संघर्ष, सामाजिक अन्याय।
और 1832 का पेरिस विद्रोह भी है उसमें।
हाँ, वो विद्रोह भी कहानी का अहम हिस्सा है। ह्यूगो यहाँ कानून की सख्ती और मानवीय करुणा के बीच का जो टकराव है उसे बहुत मार्मिक ढंग से दिखाते हैं। क्या कानून हमेशा न्याय होता है? क्या इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए? क्या वो बदल सकता है?
ये सवाल तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।
बिल्कुल, और इस उपन्यास ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इसने उन लोगों को आवाज दी जिनकी कोई नहीं सुनता था, मिजरेबल्स, यानी दुखी, पीड़ित, वंचित लोग।
काव्य में हमने लेस कॉन्टेम्पलेशंस की बात की, एक और विशाल काव्य रचना है उनकी, ला लेजेंड द सीकल्स, शताब्दियों की कथा। ये क्या है?
ये ह्यूगो की महत्वाकांक्षा का चरम है शायद। पूरी मानव सभ्यता की कहानी बाइबल के समय से लेकर उनके अपने आधुनिक युग तक कविता में कहने की कोशिश।
बापरे,
हाँ, ये इंसान की प्रगति में, ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस में उनके विश्वास को दिखाता है। उनकी दृष्टि बहुत व्यापक थी। हालांकि ये किताब उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितनी लेस मिजरेबल्स हुई।
समझ गया। और उनका आखिरी बड़ा उपन्यास 1874, वो फ्रांसीसी क्रांति के सबसे खूनी दौर, आतंक के राज पर आधारित है।
हाँ, ये उपन्यास क्रांति के ऊंचे आदर्शों और उसकी भयानक मानवीय कीमत के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। क्या महान लक्ष्यों के लिए क्रूरता जायज है? क्रांतिकारी जरूरतें बड़ी हैं या व्यक्तिगत दया और रिश्ते?
मुश्किल सवाल।
ह्यूगो यहाँ कोई सीधा जवाब नहीं देते। वो हमें उन नैतिक दुविधाओं में उलझा देते हैं जो ऐसी बड़ी उथल पुथल के समय में सामने आती हैं।
तो अगर हम ह्यूगो के साहित्यिक योगदान को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? मतलब मुख्य बातें क्या रहीं?
देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने फ्रांस में स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म को लीड किया।
हाँ।
साहित्य को नियमों से आजाद करके भावना और कल्पना के लिए खोला। दूसरा, उनका वो उदात्त और विभत्स वाला सिद्धांत जिसने कला को सिखाया कि जीवन की पूरी तस्वीर दिखाओ, सिर्फ सुंदर नहीं, कुरूप भी।
हाँ, क्वासिमोडो जैसे पात्र।
बिल्कुल। तीसरा, उन्होंने फ्रांसीसी कविता में क्रांति ला दी, खासकर वो जो पारंपरिक अलेक्जेंड्राइन छंद था उसे ज्यादा लचीला, ज्यादा भावनात्मक बनाया, जैसे किसी सख्त ढांचे को तोड़कर भावनाओं के लिए रास्ता बना दिया हो।
अच्छा।
चौथा, उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास जैसे हंचबैक और सामाजिक उपन्यास जैसे लेस मिजरेबल्स को एक नई ऊंचाई दी। और शायद सबसे जरूरी बात,
वो क्या?
उन्होंने लेखक की भूमिका को बदल दिया। लेखक सिर्फ कहानीकार नहीं बल्कि सभ्यता की अंतरात्मा है, समाज का जागरूक प्रहरी है।
वाह, सभ्यता की अंतरात्मा, ये बड़ी बात है।
हाँ, उन्होंने खुद अपने जीवन और लेखन से ये साबित किया।
उनका असर भी जबरदस्त रहा, न सिर्फ फ्रांस में बल्कि दुनिया भर में। रूस में दोस्तोयेवस्की, टॉल्स्टॉय, बाद में गार्सिया मार्केज, कामू, सब पर उनका प्रभाव दिखता है। ऐसा क्या था उनकी लेखनी में?
शायद उनका गहरा मानवीय सरोकार, अन्याय के खिलाफ उनकी जो बुलंद आवाज थी, और आम लोगों की जिंदगी में भी जो ड्रामा, जो संघर्ष, जो महानता वो देख पाते थे।
हाँ।
उन्होंने ऐसे विषयों को छुआ जो हर इंसान, हर समाज से जुड़े हैं, प्रेम, दुख, संघर्ष, आशा, मुक्ति। इसीलिए उनके पात्र आज भी हमें अपने से लगते हैं।
कुछ और रोचक बातें भी हैं उनसे जुड़ी। जैसे मैंने पढ़ा कि उनके जीते जी पेरिस की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रख दिया गया था, एवेन्यू विक्टर ह्यूगो।
हाँ, उनके 80वें जन्मदिन पर। ऐसा सम्मान तो शायद ही किसी को मिला हो जीते जी।
सच में।
और वो निर्वासन में आत्माओं से संपर्क वाली बात, वो भी उनके व्यक्तित्व का एक अलग, थोड़ा रहस्यमयी पहलू है।
उनके कुछ कोट्स भी बहुत मशहूर हैं, जैसे वो वाला, उस विचार से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जिसका समय आ गया हो।
हाँ, ये उनके प्रगति में विश्वास को दिखाता है कि बदलाव को कोई रोक नहीं सकता जब उसका वक्त आता है।
और लेस मिजरेबल्स का वो कोट, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना ईश्वर का चेहरा देखना है, कितना सुंदर है ये।
बहुत गहरा, प्रेम की ताकत को दिखाता है। और उनकी कला का सार शायद इस बात में है, सुंदर का केवल एक प्रकार होता है, कुरूप के हजार। उदात्त के साथ विचित्र ग्रोटेस के सार्थक मिलन से ही आधुनिक प्रतिभा का जन्म होता है।
ये उनकी कला का मूल मंत्र था।
बिल्कुल। और एक और बात जो आज बहुत जरूरी लगती है, सहिष्णुता सबसे अच्छा धर्म है।
सहिष्णुता, टॉलरेशन, आज इसकी कितनी जरूरत है।
सही कहा।
अच्छा, उनकी रचनाओं पर फिल्में और नाटक भी तो बहुत बने हैं।
हाँ।
हंचबैक ऑफ नोटरडेम के तो कितने ही वर्जन हैं, डिज्नी वाला भी।
हाँ, और लेस मिजरेबल्स अनगिनत फिल्में, टीवी सीरीज, लेकिन जो 1980 के दशक में म्यूजिकल बना।
हाँ, वो म्यूजिकल तो जबरदस्त हिट हुआ था।
वो तो एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। उसने ह्यूगो के उपन्यास के इमोशनल कोर को, उसके दर्द को, संघर्ष को, उम्मीद को संगीत के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया।
सही बात है।
उसके गाने जैसे डू यू हियर द पीपल सिंग, वो तो आज भी दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों में उम्मीद के गान बन गए हैं। उस म्यूजिकल ने ह्यूगो को आज की पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया।
तो आखिर में अगर हम सोचें, विक्टर ह्यूगो की विरासत क्या है, क्यों आज भी हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए?
मेरे ख्याल से ह्यूगो की जो स्थायी ताकत है वो सिर्फ उनकी रोमांचक कहानियों या यादगार किरदारों में नहीं है।
तो फिर किस में है?
वो है उनके उस अटूट विश्वास में कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, कितना भी अन्याय हो, इंसान के अंदर बेहतर होने की, अपनी मुक्ति पाने की क्षमता हमेशा रहती है।
मानवता में विश्वास।
हाँ, उनकी कला हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, वो हमें झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी दुनिया को, अपने समाज को थोड़ा और न्यायपूर्ण, थोड़ा और मानवीय कैसे बना सकते हैं।
और ये सवाल शायद कभी पुराना नहीं होगा।
कभी नहीं, यही ह्यूगो की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है आज भी।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।